बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप सब लोगों को हमारी इस रमजान ट्रांसमिशन में मैं खुश आमदीद कहती हूँ हमारी वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जानिब से। इंशाल्लाह कि ये क्लासेस का सिलसिला जो कल यकम रमजान से शुरू हुआ था, मतलब कल से शुरू हुआ था शब यकम रमजान से, तो आइंदा पूरा माह रमजान जारी रहेगा और हम मुख्तलिफ सूरतों पे में इस माह रमजान में तदब्बुर करेंगे कि आया क्या पैगामात ये सूरतें हमारे लिए रखती हैं, खुदा ने क्या पैगामात इन सूरतों को देकर हमारे लिए नाजिल किया है। आप लोगों में से बहुत से अफराद कल की नशिस्त में जो थे मौजूद थे, तो कल की नशिस्त हमारे उस्ताद बाकर चीत चान के साथ ही, जो कि ईरान से मौजूद थे यहाँ पर। उसमें हमारी जो नशिस्त का उनवान था वो तदब्बुर सूरह नबा था, यानी कि सूरह नबा में क्या मफाहिम और पैगाम हमारे साथ हमारे पास मौजूद है उसके तरफ इशारा किया गया था। मैं उसके खुलासे की जानब बढ़ने से पहले एक खाका आप लोगों के सामने जो है वो पेश करना चाहूंगी कि किस तरीके से हमारी ये जो ट्रांसमिशन है पूरी पूरे माह चलेगी। तो इसमें हमारे पास कुल 29 अयाम बनते हैं, जिसमें हर रोज जो है हम सिलसिला ब सिलसिला मुख्तलिफ असातीद के साथ, जिसमें हमारी जो सरबराही है वो उस्ताद अली अब्बास नकवी करेंगे, और हम इंशाल्लाह के मुख्तलिफ सूरतों के साथ अपने माह रमजान को गुजारेंगे। आज का हमारा उनवान नाजियात है, जिसमें हमारे पास उसकी सरबराही करेंगे डॉक्टर अली अब्बास नकवी, और उनके साथ जो हमारे पास को टीचर कह लें वो है हमारे पास जाहिद शाह, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के शोबे करते हैं। फिर इसी तरीके से सूरह अब्बास, तकवीर, तारिक, मुतफिफीन और मुख्तलिफ सूरतों के जरिए से हम अपनी इस ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाएंगे। और इंशाल्लाह कि आप सब हमारे साथ इस पूरे सफर में जुड़े रहेंगे। मैं आपको भी बताती चलूं कि जब हमारा ये पूरा खूबसूरत तरीन सफर माह रमजान का मुकम्मल हो जाएगा, तो फिर जो भी 90% से ज्यादा हाजिरी रखने वाले अफराद हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए सर्टिफिकेट्स हैं। उसके साथ साथ एक और बात जो है आप लोगों के लिए कि जब ये आप लोगों का मुकम्मल होगा आज का दर्स, तो आप लोगों से कुछ सवालात पूछे जाएंगे उसी ग्रुप में मखसूस टाइमिंग्स में, तो उसका जवाब भी आप लोगों को देना होगा। तो हम चलते हैं कल के उनवान की तरफ, ताकि आज हम देखें कि सूरह नाजियात दरअसल हमें क्या पैगाम देगी, जो कि असातीद आपके साथ शेयर करेंगे। कल उस्ताद चीत चियान ने हमारे सामने नबा को रखा था। सूरह नबा में नबाए अजीम क्या है? नबाए अजीम एक बहुत बड़ी खबर को कहा गया है। अब ये खबर दरअसल कयामत, ये रोज़े आकबत, रोज़े कयामत की खबर है कि कयामत जो है वो वकूफ पजीर हो चुकी है। खबर किस चीज की आती है? खबर उस वाक़े की आती है कि जो वाक़या हो चुका हो। अब यहाँ पर क्या वाक़या हो चुका है? जैसे खुदा ने मुख्तलिफ चीजें इस दुनिया में खल्क की हैं, वो तमाम की तमाम जो है वो वकूफ पजीर हैं, वो वाकई हो चुकी हैं और खुदा के वजूद पर दलालत करती हैं। इसी तरीके से कयामत भी दरअसल वाकई हो चुकी है और दलालत करती है खुदा की तमाम खिलकत पर। हम ये तसव्वुर करते हैं ना कि कयामत आएगी और उससे पहले हमें कुछ वक्त दिया जाए कि हम कयामत के आने की तैयारी करें, आकबत की तैयारी करें, तो ऐसा नहीं है। कयामत दरअसल वकूफ पजीर हो चुकी है, जो कि सूरह नबा में खुदा ने बारहा इस बात का ऐलान कर दिया है। अब नबाए अजीम वो उसी तरफ इशारा है कि जो कि बहुत बड़ी एक कोई हमारे सामने खबर है कि जो वाकई हो चुकी है। तो गोया अगर हम इस बात को की अहमियत को समझें कि दरअसल हमारे पास वक्त नहीं है कि हम कयामत की तैयारी करें, हम अपनी आकबत के लिए तैयारी करें, जैसे मौत बरहक है ना मगर वो आएगी किसी वक्त, इसी तरीके से कयामत है लेकिन कयामत वाकई हो चुकी है। तो गोया हमारे पास वक्त नहीं है कि हम उस तरीके से अपनी जिंदगियों को संवारने के लिए एक वक्त का इंतजार करें कि हमें मिलेगा कयामत आने से पहले, जबकि वह वाकई हो चुकी है क्योंकि खबर उसकी खुदा ने दे दी है। तो सूरह नाजियात हमें क्या बताती है? सूरह नाजियात में इंसान की जिंदगी के ऊपर बात की गई है। सूरह नाजियात में ये बयान किया गया है कि दरअसल इंसान क्यों खल्क हुआ है और दुनिया की जिंदगी क्या हकीकत रखती है। तो आप ये देखें कि नबाए अजीम, जो कि एक बुनियाद कल की क्लास में रखी गई, और आज जो सूरह नाजियात है उसका इर्तबात क्या है। यही कि हम देखें कि कयामत दरअसल वाकई हो चुकी है, तो अब इंसान को इस फिक्र करने की जरूरत है कि उसकी खिलकत का मकसद क्या है, और अगर वो इस दुनिया में भेजा गया है जबकि कयामत भी वाकई है, तो फिर जिंदगी की हकीकत क्या है। ये मुख्तलिफ सवालात हैं जो सूरह नाजियात को पढ़ने के बाद हमारे जहनों में उजागर होते हैं। और आप खूबसूरती देखें तदब्बुर की कि हमें बहुत कोई फलसफी होने की जरूरत नहीं है, कुरान इंसान के सवालों का जवाब भी खुद देता है, और ये सब कुछ हम निजामे तदब्बुर के जरिए से सीख सकते हैं। अपने सवालात का जवाब खुद कुरान खुद अपनी आयात से देता है। तो ये हमारे पास एक बहुत खूबसूरत निजाम है तदब्बुर का। हम मुख्तलिफ कड़ियों को जोड़ते हैं और फिर उन्हीं सवालात के जवाबात हमारे जहनों में कुरान खुद हमें देता है, जो सवालात हमारे जहनों में होते हैं उनके जवाबात। और इस तरीके से इंसान जो है वो इर्तका की मंजिल को तय करता है। मगर यहाँ पर अफसोस है कि हम उस तरीके से कुरान को समझ नहीं सके, ये कुरान की मजलूमियत है। तो अब खुदा ने हमें तौफीक दी है कि माह रमजान को हम बेहतरीन मौका समझें और बेहतरीन तौर पे इसको इस्तेमाल करें कुरान के मतालिब को समझने के लिए। तो हम 30वें पारे की जो सूरतें हैं उनके मेहमान रहेंगे और ये देखेंगे, ये समझेंगे कि दरअसल वो हमें क्या सबक देती हैं और जिंदगी में उनको कैसे हमने इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं आज के जो हमारे असातिद हैं प्रोफेसर जाहिद शाह साहब हैं, उनकी तरफ चलूंगी कि वो जो है आज की निशिस्त को बाकायदा से आगे लेकर चलें। आगा साहब, आपको आवाज आ रही है? आप हमारे साथ मौजूद हैं? आगा जाहिद,
आगा
आप
साहिब आप
आ रही है?
जी।
सलाम अलैकुम।
वालेकुम सलाम।
अब ये निशिस्त आपके हवाले, ये हम तमाम लोगों को आप इर्तका की जानिब लेकर जाएं कि सूरह नाजियात में खुदा हमारे लिए क्या पैगामात बयान करता है।
सलाम अलैकुम रहमतुल्ला।
वालेकुम।
इंशाल्लाह जाहिद भाई गुफ्तगू करेंगे। मैं आगाज करूंगा इंशाल्लाह इसके नतायज और इसके जमबंदी और इसमें से तहारती नुक्ता जरूर इंशाल्लाह जाहिद भाई बयान करेंगे। एक दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात पर। जी
बंद तो है। अल्लाह
आप लोगों
सलाम।
आवाज आ रही है आप लोगों को?
जी जी
अपने
आवाज
माइक,
आवाज
हाँ अपने
जी
माइक बंद कर दें बाकी अफराद जो है, ताकि क्लास का आगाज कर सकें। अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वबिही नस्तईन। इलाही अंतिकनी बिलहुदा व अलहिमनी तक्वा। उसी के नाम से जो रहमान और रहीम और मौत व हयात का मालिक है। सबसे पहले माह खुदा माह रमज़ान मुबारक की मुनासबत से आप सबको इस कुरानी महफिल में, इस कुरान जिंदगी क्लासेस में एक बार फिर आप खवातीन व हजरात को, आप दो कुरान दोस्त अहबाब को खुश आमदीद कहते हैं। खुदा ने हमें सआदत बख्शी है कि एक बार फिर हम उस जात जो रऊफ है, जो करीम है, जो रहमान है, उस जात के मेहमान बनने जा रहे हैं, जो हमारा खालिक है, जो हमारा परवरदिगार है, जो हमारा मालिक है, जो हमारी तदबीर करने वाला है, उसके मेहमान बनने जा रहे हैं। और इस माह रमज़ान जो है, हमने इस ट्रांसमिशन का नाम कुरान जिंदगी इंतखाब किया है। और इस इन तीनों अशरों में जो रहमत का अशरा है, जो मगफरत का अशरा है, जो निजात जहन्नम का अशरा है, इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि 30वें पारे की खिदमत में रहें और 30वें पारे में जो 37 सूरतें हैं उसमें तदब्बुर और तअक्कुल कर सकें। गुज़श्ता रोज़ जैसा कि हमारे मेज़बान ख़ार ने कहा कि हम सूरे नबा के मेहमान बने थे, आज हम सूरे नाजियात के मेहमान बनने जा रहे हैं। सूरे नाजियात की खिदमत में हैं, सूरह नाजियात के महजर में है। और सूरह नाजियात में इंशाल्लाह हम तदब्बुर और तअक्कुल करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसमें जान सकें कि सूरह नाजियात के नुजूल का मकसद क्या है, نازعات میں کون سی تعلیمات دی گئی ہیں، سورہ نازعات میں کیا حقائق بیان کیے گئے ہیں، اور ہماری کیا تشنگی سورہ نازعات ہماری ضرورت ہماری نیاز مندی کو پورا کرتی ہے. اس سے قبل کے سورہ نازعات پر ہم بات کریں اور دعا کریں گے انشاءاللہ. سورہ نازعات نہ فقط ہماری دنیا میں بلکہ آخرت میں ہمارے لیے شفاعت کا باعث بنے گی. ایک بار پھر سب مل کر درود بھیجے محمد وآل محمد کی ذات پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بہت سارے افراد میں دیکھ رہا ہوں کہ نئے افراد ہیں یہاں پر، اور چاہوں گا کہ لفظ تدبر کے معنی بیان کر سکوں اور تدبر قرآن کسے کہتے ہیں اس پر بات کر سکوں. اور پھر ہم نے یہ جو تدبر قرآن کا دسترخوان لگایا ہے اس کی وجہ اور علت آپ کے سامنے پیش کر سکیں. اگرچہ کل استاد محترم ڈاکٹر محمد باقر چیچیان نے اس پر بات کی تھی، میں مزید تھوڑا سا اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ تو نازیات میں میں بات کروں گا. اس کے بعد جو ہے ہمارے ساتھ پروفیسر زاہد شاہ صاحب ہیں، ان سے بھی ہم استفادہ کریں گے. ہر روز ہم ایک صورت میں جب گفتگو کر رہے ہوں گے، دو صورتوں میں دو افراد یعنی جو ان شاء اللہ تعالیٰ اس سورے کے میں تفکر کریں گے، تعقل و کچھ نکات آپ کے سامنے تعارف پاکیزگی کے منصوبہ بندی کے پیش کیا کریں گے. ایک میں آپ کی خدمت میں ہوں گا اور ایک روزانہ کی بنیاد پہ مختلف افراد جو ہمارے ساتھ نہضت تدبر قرآن میں جڑے ہوئے ہیں اور سالہ سال سے قرآن کریم کی اس تدبر کی کلاسز میں آتے ہیں، انشاءاللہ وہ مختلف صورتوں پہ اپنے نقاط آپ کے سامنے اپنے رائز آپ کے سامنے پیش کیا کریں گے. آواز واضح ہے نا ہماری؟
کی آواز کلیئر ہے، اور میری گزارش تھی کہ برادر زاہد، آغا زاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی کائنڈلی ہوسٹ کر دیں آپ، تاکہ وہ ہم آتا رہے.
ہاں اگر وہ انگریز کریں گے تو میں تھوڑا سا ان کو آسانی سے جو ہے ہوسٹ کروں گا. میں جو ہوں شاہد بھائی کہاں پر ہیں، میں آپ کو ہوسٹ بنا دیتا ہوں، آپ پھر ان کو یا مل گئے نظر آ گئے، وہ بہترین ہو گیا، زبردست ہو گیا زاہد بھائی، یہ ہو گیا جی. تو بن گئے ہوسٹ وہ، میرا خیال بن گئے جی. میں عرض کر رہا تھا کہ اس سے پہلے کہ ہم سورہ نازعات میں تدبر و تعقل کر سکیں، تو میں دیکھ رہا تھا بہت سارے افراد آج اس گزشتہ روز سے ہمارے سے جڑے ہیں، تو تدبر کے موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں. ابھی چیٹ باکس میں بھی آ رہا ہے کہ تدبر کا مطلب ہوتا ہے کسی موضوع کی عاقبت پر توجہ کرنے کو تدبر کہتے ہیں. یعنی تدبر میں تین بنیادی الفاظ بڑے اہم ہوتے ہیں، ایک موضوع ہے اور ایک اس موضوع پر اس موضوع کی عاقبت، اور پھر اس پہ توجہ کرنے کو تدبر کہا جاتا ہے. اور تدبر قرآن سے مراد ہی کیا ہے؟ تدبر قرآن سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم کی صورتوں اور اس کی آیات، قرآن کے کلمات و الفاظ پر میں جو تدبر جو عاقبت موجود ہے اور جو اس حوالے سے پیغامات موجود ہیں، اس صورت میں جو کیا کہتے ہیں اس کو حقائق موجود ہیں انسان کے لیے، اس کو جاننا، اس کی شناخت حاصل کرنا اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی میں نافذ کرنا، اس کو تدبر قرآن کہا جاتا ہے. بس تدبر کسے کہتے ہیں؟ کسی موضوع کی عاقبت پر توجہ کرنا کہلاتا ہے. شاباش، آپ لوگ میسج میں چیٹ باکس لکھ رہے ہیں، بہت خوب. اور تدبر قرآن سے مراد یہ ہے کہ قرآن کی آیات اور قرآن کی صورتوں کو یوں تلاوت کریں کہ اس سے ہم جو ہے حقائق کے قرآن کو جان سکیں، اس میں سے جو عاقبت موجود ہے انسانوں کے لیے اس کو دریافت کر سکیں، اور پھر ان حقائق کو، ان قوانین زندگی کو، ان اصولوں کو جو انسان کے لیے موجود ہیں، انسان کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں، انسان کی عاقبت کے لیے موجود ہیں، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کو تدبر کہا جاتا ہے. ہم نے گزشتہ روز سورہ نبا کے فلسفہ نزول کو سمجھا اور پھر کوشش کی تھی کہ اس میں سے نکات زندگی، حقائق زندگی، وہ عبرتیں، وہ عاقبتیں حاصل کریں اور اس کی روشنی میں سورہ نبا کو اپنی زندگی میں لاگو کریں. آج جبکہ ہم جو ہے تدبر سورہ نازیات کرنے جا رہے ہیں، جس کا مطلب یہی ہے کہ سورہ نازیات کی آیات میں جو عاقبت موجود ہے، جو اصول اور قوانین موجود ہیں، हकाइक मौजूद है उसको समझे, पहले मरले पे उसको समझे, और फिर उसको अपनी जिंदगी में लागू करने को तदब्बुर कुरान कहा जाता है। अपना माइक अगर बंद रखेंगे तो आसानी से हम क्लास को जारी रख सकेंगे। तुम्हारे रमजान 30वें पारे की 37 आयात में हम कोशिश कर रहे हैं कि वो उन हकाइक को तलाश करें जो हमारे लिए अल्लाह ताला ने इन सूरतों में बयान किए हैं, और जो उन सूरतों में जो है नुकात जिंदगी बयान किए गए हैं, जो तहारत के नुकात बयान किए गए हैं, जो तअक्कुल के वो कवानीन बयान किए गए हैं, उनके लिए मनसूबा बंदी करें कैसे अपनी जिंदगी में उन हकाई की जिंदगी को जारी करें। तो एक बात ये होगी। दूसरी बात इस सिलसिले में के नाजियात से पहले कभी तलावत की जाएगी आपके सामने, तलावत इंशाल्लाह ताला जो है हमारी मुंतजमीन लगाएंगे, आप लोग तमाम अफराद जो है कुरान करीम को सामने रखते हैं। एक नुकता और बयान करना चाहता हूँ, वो ये है कि तदब्बुर और तफसीर में फर्क है, यानी कि ये क्लासेस जो है दरवाके तफसीर की क्लासेस नहीं है कि हम 30वें पारे में सूरह बे सूरह अव्वल 30वें पारे से लेकर आखिर 30वें पारे तक तफसीर बयान कर रहे हैं जा रहे हैं, नहीं, हरगिज आता नहीं है। हाँ, तफसीरी नुकात हो सकता है हूँ जो तदब्बुर और तअक्कुल के लिए मुफीद हो, उनको यहाँ बयान किया जाए, लेकिन तदब्बुर दरवाके ये है कि हम ये चाहते हैं कि उन नुकात को, उन कवानीन को, वो जो सूरे में हकाई के कुरानी मौजूद हैं, जो तालीमात मौजूद हैं, जो मारिफ मौजूद हैं, उसको समझें, उसको तलाश करें और अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए कोशिश करें। कैसे? तफक्कुर के जरिए से, तअक्कुल के जरिए से, सूरे के गरज और मकसद को समझने के जरिए से, और सूरे में जो गरज और मकसद को कैसे अपनी जिंदगी में नाफिज करना है उसके जरिए से हम ये काम करने जा रहे हैं। और आज जो सूरह नाजियात है उसके आपके सामने जो शुरू में एक पोस्ट भी शेयर की गई थी, ये कि उसमें बताया गया था कि सूरह नाजियात का मौजू ये कि इंसान को क्यों खल किया गया है, उसमें बताया गया कि दुनिया में जिंदगी की हकीकत क्या है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। क्यों? उसकी वजह ये कि इंसान जब इस दुनिया में आता है तो दुनिया में बहुत सारी चीजों का उसका सामना होता है जो उसको मकसद जिंदगी से दूर कर सकती है, जो उसको जो है उसको गफलत का बायस बन सकती है, जो उसके लिए ऐसा है कि रुकावट का बायस बन सकती है कि उस जिंदगी के मकसद से इंसान जो है गुम हो जाए, वो रास्ता जो जिंदगी के मकसद की तरफ आगे बढ़ रहा है, वो रास्ता जो कमाल का रास्ता है, वो रास्ता रुश्द को हिदायत से तो मुनहरिफ हो जाए। ये सूरतें इसलिए आई हैं ताकि इंसान को रुश्द तो कमाल की तरफ लेके चल सके। उनमें से एक सूरह सूरह नाजियात है जिसमें जो है इंसान की खिलकत का मकसद बयान किया गया है, जिसमें दुनिया की जिंदगी की हकीकत को बयान किया गया है। अब जैसे कि मैं भी अर्ज कर रहा था कि दुनिया में इंसान आता है बहुत सारी चीजों का उसका सामना होता है, ऐसे में दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो उसे जिंदगी के असली हदफ, हकीकी हदफ से जो है दूर कर देती हैं। वो दुनिया की लज्जतें हैं, वो दुनिया की गफलतें हैं, वो दुनिया में हैरतें हैं, और ये ऐसी हकीकत है इसका इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में सूरह नाजियात इसलिए आई है कि इंसान को बता सके कि इंसान तुम्हें क्यों खल्क किया गया है। सूरह नाजियात इसलिए आई है कि इंसान को बता सके तुम एक दूसरे लोगों से, कायनात में, दुनिया से में दूसरे मौजूदात हैं उससे कुछ मुख्तलिफ हो, तुम उस जैसे नहीं हो, तुम्हें अल्लाह ताला ने कमाल की नेमतों से नवाजा है और वो अशरफ मखलूकात है, लिहाजा इंसान इन नेमतों के जरिए से और वो इंसान कमाल के रास्ते को जान सकता है। अब चलते हैं इस मुकदमे के बाद जो है तलावत की तरफ। मैं चाहूंगा कि सूरह नाजियात की तलावत आपको पेश की जाए, फिर एक सूरह कि मुकम्मल तस्वीर मैं कोशिश करूंगा आयात के इर्तबात के जरिए से, जैसे गुज़श्ता रोज सूरह नबा के हवाले से काम किया गया था, आज सूरह नाजियात में किया जाए कि मुकम्मल आयात को आपस में इर्तबात देते हुए कुछ तदब्बुर के नुकात आपके सामने पेश करेंगे, और आखिर में इंशाल्लाह बरादर ज़ाहिर शाह जो है इसके जो तहारत के नुकात आपके सामने पेश करेंगे। जी बिस्मिल्लाह, तलावत सूरह नाजियात अगर आप लोगों आमादा तो शेयर कीजिए।
بسم الله الرحمن الرحيم. النازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا السابقات سبقا المدبرات امرا.
شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کافروں کی جان کھینچ لیتے ہیں اور ان کی جو مومنوں کی جان آسانی سے نکالتے ہیں اور ان کی جو تیرتے ہوئے جاتے ہیں پھر لپک کر آگے بڑھتے ہیں پھر دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں.
یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب یومئذ واجفة ابصارها خاشعة.
کہ وہ دن آ کر رہے گا جس دن وہ زلزلہ آئے گا پھر اس کے پیچھے اور زلزلہ آئے گا اس دن لوگوں کے دل خوف زدہ ہوں گے اور آنکھیں جھکی ہوئی.
یقولون ائنا لمردودون فی الحافرة ائذا کنا عظاما نخرة قالوا تلك اذا کرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة.
کافر کہتے ہیں کیا ہم الٹے پاؤں پھر لوٹیں گے بھلا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے. کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا تو سراسر نقصان کا لوٹنا ہوگا تو بس وہ ایک ڈانٹ ہوگی اس وقت وہ سب میدان حشر میں آ جمع ہوں گے.
هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى.
بھلا تم کو موسیٰ کی حکایت پہنچی ہے جب ان کے پروردگار نے ان کو پاک میدان یعنی توا میں پکارا اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو رہا ہے پھر اس سے کہو کہ کیا تو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے اور میں تجھے تیرے پروردگار کا رستہ بتاؤں تاکہ تجھ کو خوف پیدا ہو. غرض انہوں نے اس کو بہت بڑی نشانی دکھائی مگر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا سو اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا پھر بلند آواز سے بولا سو کہنے لگا کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں تو اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ لیا. جو شخص اللہ سے ڈر رکھتا ہے اس کے لیے اس قصے میں عبرت ہے.
أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءِ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ.
بھلا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا؟ اللہ نے اس کو بنایا اس کی چھت کو اونچا کیا پھر اسے برابر کر دیا اور اسی نے رات تاریک بنائی اور دن کو دھوپ نکالی اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا اسی نے زمین میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لیے کیا.
فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.
پھر جب وہ بہت بڑی آفت آئے گی اس دن انسان جو محنت وہ کرتا رہا یاد کرے گا اور دوزخ دیکھنے والے کے سامنے لا کر رکھ دی جائے گی. اب جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو مقدم رکھا تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے. اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا اور نفس کو بیجا خواہشوں سے روکتا رہا تو اس کا ٹھکانہ بہشت ہی ہے.
يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.
اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کی قیامت کب ہے, سو تم اس کے ذکر کی طرف سے کس فکر میں ہو؟ اس کا منتہا یعنی واقع ہونے کا وقت تمہارے پروردگار ہی کو معلوم ہے. جو شخص اس سے ڈر رکھتا ہے تم تو اسی کو ڈر سنانے والے ہو. جب وہ اس کو دیکھیں گے تو ایسا خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں صرف ایک شام یا ایک صبح رہے تھے.
انشاءاللہ آپ لوگوں نے بھی تلاوت کی ہوگی اور یقیناً آپ لوگ تلاوت کرتے رہیں, اور ہمیشہ ہر کلاس سے پہلے جس سورے کی یہاں پہ تدبر کی کلاس منعقد کی جاتی ہے کوشش کریں کہ اگلے روز وہ تلاوت خود بھی آپ اس کی کر کریں, چند بار اس سورے سے انس پیدا کریں تاکہ پھر رات کی کلاس میں اہم نقاط آپ کے سامنے پیش کیے جا سکیں. میں شروع میں عرض کر رہا تھا کہ جو ہے اس سورے کا غرض مقصد ہر سورے کا ایک ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر سورتوں جو کو نازل کیا ہے یقیناً اس کا کوئی غرض یا کوئی مقصد ہوتا ہے, اور اسی کو ہمیں تدبر کے ذریعے سے تعقل کے ذریعے سے اس کو ہم تلاش کر سکتے ہیں. آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟
جی جی سب کی آ رہی آواز.
نہیں بہت کم آ رہی ہے آپ کی آواز.
کوشش کرتے ہیں بہتر کرنے کی, میرا کیمرہ کوئی بند کر دے تو میں. لیکن جن لوگوں کی آواز کا ایشو ہوتا ہے
سب گزارش ہے ہینڈ فری لگا لیں, سب ہینڈ فری لگا لیں اور مائک قریب رکھیں تو آواز آ جائے گی سب کو.
یہ بہتر, اچھا مشورہ ہے, ہینڈ فری لگا لیتے ہیں. ایک سوال بھیجے محمد علی محمد. اللہ اللہ اب شاید آواز بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہم عرض کر رہے تھے کہ پہلی پانچ آیات بہت بنیادی آیات ہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ ابتدائی آیات میں ون بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا, قسم ہے ان فرشتوں کی جو ہے جان یہ گھس کر کھینچ لیتے ہیں یعنی روح قبض کرتے ہیں, والناشطات نشتا اور آسانی سے نکال لیتے ہیں, والسابقات والسابحات سبحا والسابقات سبقا, اور اگلی آیت فالمدبرات امرا. یہ پہلی پانچ آیتیں بہت بنیادی آیات ہیں. روایات اور تفسیروں میں اگر دیکھا جائے تو اس میں کہا گیا ہے کہ یہ آیات جو ہیں اس میں یہ سورہ قسم سے آغاز ہو رہی ہے. قرآن کریم کی بہت ساری سورتیں جو ہیں قسم سے آغاز ہو رہی ہیں. لائٹ کا ایشو تھا, آیات نظر نہیں آ رہی تھیں تو عرض کر رہا تھا کہ بہت ساری قرآن کی صورتیں قسم سے آغاز ہوئی ہیں. انشاءاللہ ایک سوال آپ سے یہ رہے گا انشاءاللہ ہوم ورک میں کہ صورتوں کا آغاز قسم سے کیوں ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے کیوں قسم کھائی ہے, اور اس کی وجہ اور سبب آپ سے پوچھیں گے اور ہم انشاءاللہ جواب بھی گروپ میں ارسال کریں گے.
वक्त कम है तो हम आगे बढ़ते हैं कि रवायात और तफसीरों में जो जो कुछ कहा गया है वो ये है सूरे के हवाले से कि जो है इसमें कसम से आगाज और ये पहली पांच आयतें फरिश्तों से मुतल्लिक हैं। वो फरिश्ते जो मौत के वक्त रूह कब्ज करते हैं और इन्हें एक ऐसी जगह ले जाते हैं, और जो है वो मलाइका हैं जो जिनको तदबीर के लिए अल्लाह ताला ने इंतखाब किया है। उनके वो जो काम कर रहे होते हैं उनमें कोई खामी नहीं, कोई बुराई नहीं है, वो अपना काम पूरी तरीके से अंजाम देते हैं और इस काम को अंजाम देने के लिए वो सबकत लेते हैं और तमाम कामों में अपने जो अंजाम दे रहे होते हैं होशियारी का पहलू देते हैं। एक नुक्ता जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये कि तदबीर उमूर के सिलसिले में जो है अगरचे हकीकी तदबीर हकीकी मुदब्बिर तो अल्लाह ताला की जात है, अल्लाह की जात है जो तदबीर करने वाला है, लेकिन अल्लाह ताला ने जो फरिश्ते के जिम्मे लगाया वो ऐसा है जैसे फरिश्ते जो है कातिब के हाथ में कलम की तरह होते हैं, लेकिन हकीकी तदबीर अल्लाह ताला की जात अंजाम दे रही होती है। मसलन फरिश्ते जो है फरिश्ते के जिम्मे वही को नाजिल करना था और उम्मतों पे बला और नेमतों के नाजिल करने में वास्ता बनते हैं फरिश्ते, कब्र में हिसाब लेने के वास्ता बनते हैं, क्यामत के दिन सवाब और इकाब देने के लिए होंगे, और इसी तरीके से रवायात में आया है कि जहन्नम के दोरोगा के तौर पर भी यानी वहां पे दरबार के वहां पे खड़े होंगे और वहां पे बहुत सारे जहन्नम के उमूर को भी जो दरवाजे पर खड़े होकर अंजाम दे रहे होंगे। तो बस इन आयात में भी जो इब्तदाई चार पांच आयात हैं सूरह नाज़ियात की, इसमें फरिश्तों की मुख्तलिफ इकसाम की तरफ इशारा किया गया और ये बात बताई जा रही है कि हमें जिंदगी में इस पर तवज्जो करनी चाहिए। हमने आज तक फरिश्तों के हवाले से कि फरिश्तों का और मलाइका का किरदार क्या है, वो क्या काम अंजाम देते हैं, उसमें कभी हमने तदबीर नहीं की, उसमें हमने कभी जो है सोचे ही नहीं, क्योंकि इस निज़ाम कायनात में ऐसे कानून हैं, ऐसे उसूल हैं जो बहुत सारे उमूर को तदबीर को जो है खुदावंद के इज़्ज़त से वो काम अंजाम दे रहे होते हैं। इब्तदाई पहली पांच आयात में अगर हम तफक्कुर ताक्कुल करें तो ये बात समझने में आती है। मिसाल के तौर पे मिसाल देता हूँ कि अगर किसी मुल्क का सरबरा जो है कोई काम करने के लिए अपने जो है एक ऐलान करता है कि इस साल बजट का ऐलान है और कहा जाता है कि बहुत ज्यादा जो है सरफेजुई की जाए, बचत की जाए, तो ऐसे में जो सिदारती फरमान है यानी वजीर आजम का या किसी मुल्क के सरबरा का, तो वो सिदारती बयान या वो अंजाम देता है, लेकिन नीचे जो वजारतें होती हैं वो मुख्तलिफ अंदाज में उस पैगाम को, उस बयान को, उस हुक्म को लेते हैं, उस फरमान को और उस काम को अंजाम देते हैं। इसी तरीके से दुनिया का निज़ाम भी इसी तरीके से है, यानी कायनात का निज़ाम भी इसी तरीके से है। मजीद मैं इसकी आपको वजाहत दूंगा कि अल्लाह ताला ने जो है मुख्तलिफ आकाम जारी करता है और इसमें मुख्तलिफ दर्जे यानी उसके सिलसिले मरातिब या सिलसिले दर्जात होते हैं, वो आकाम इलाही जो नाजिल होते हैं वहाँ पे मुख्तलिफ फरिश्ते उसको मुख्तलिफ अंदाज से कामों का अंजाम दे रहे होते हैं। इस मामले में जो है फरिश्ते बहुत बुनियादी किरदार अदा करते हैं, फरिश्तों की बहुत अहमियत है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है बदकिस्मती है कि हम अपनी जिंदगी में फरिश्तों के बारे में आगाह नहीं है। यानी मैं आपको देखता हूँ, आप मुझे देख रहे होते हैं और हम कोई ना कोई काम अंजाम दे रहे होते हैं माशरे में, ऐसे में ये और देख रहे होते हैं निज़ाम कायनात को देख रहे होते हैं, लेकिन ये निज़ाम कायनात कैसे चल रहे हैं और ये कैसे खुदा के मज़ाहिर कुदरत हैं, ये हम तक कैसे पहुंचे हैं, ये निज़ाम कैसे वजूद में आया है। हमें जो है जरूरत इस अमर की है कि इन सिलसिले मरातिब को समझना होगा, ये सिलसिले दराजात को समझना होगा और उनसे आगाही हासिल करनी होगी, उनकी मार्फत हासिल करनी होगी। उनमें से सबसे अहम सिलसिला मरातिब जो है वो फरिश्तों का है। इस सूरत में जो हमें नजर आता है कि हमें चाहिए कि अल्लाह ताला के जो फरिश्ते हैं जो बुनियादी किरदार इस निज़ाम कायनात में अंजाम दे रहे हैं वो समझना होगा। दवायात में बात मौजूद आई है, अहले बैत ने भी फरिश्तों के हवाले से उनके उमूर जो तदबीर कर रहे होते हैं जिक्र किया है और फरिश्तों को सलाम भेजा है और उनसे गुफ्तगू की है और उनका जिक्र किया है। इस बात को एक और ज़ावी निगाह से मैं आपके सामने बयान करता हूँ, शायद समझने में आसानी हो। और आप लोगों ने वो वाक्य जंगे बद्र का सुना होगा कि जंगे बद्र में जो है या जंगे गजबे बद्र में क्या हुआ कि कुफार 3,000 का लश्कर था, इसके मुकाबले में मुसलमान 300 अफराद थे, उनकी तादाद बहुत कम थी, कलील तादाद थी। फिर क्या हुआ कि ऐसे में किस तरीके से कोई अकल सलीम ये कबूल नहीं कर सकती कि किस तरीके से मुसलमानों को फतह हुई। वो मुसलमानों को फतह फरिश्तों की वजह से हुई, वहां पे फरिश्ते उन 300 के पीछे जो है सब दर सब मौजूद थे, और दुश्मनों के लिए जो है मसल्ला जंगजू जो आए हुए थे उनके लिए उस मुसलमानों की हमायत का बाइस बने, मुसलमानों की मदद का बाइस बने। और ऐसे में हमारी आम सी जो अकल है अकल सलीम ये कबूल नहीं कर सकती कि किस तरीके से हुआ। लेकिन अकल सलीम से मुराद यही मुराद मैं ये कहना चाहूंगा जहानत है, लेकिन खुदा की मार्फत रखने वाले आकाम इलाही को इताअत करने वाले अकल मुराद नहीं है। बस हुआ ये कि फरिश्ते जो थे इन 300 आदमियों अफराद के पीछे सफरा हो गए, और लश्कर को कई हजार लश्कर में उन्होंने बदल दिया, और यूं बदर की जंग जो है मुसलमानों ने जीत ली। और ये किसकी बदौलत हुआ था? ये खुदा के फरिश्तों की वजह से हुआ था। मुश्किल ये कि हमारा राबता फरिश्तों के साथ नहीं है, और हम गाफिल हैं कि किस तरीके से फरिश्ते इस दुनिया में भी हमारे लिए आसानियां पैदा कर सकते हैं और हमारी जो है नुसरत और मदद के लिए पहुंच सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है किस तरीके से हम जो है मलकूत से जुड़ सकते हैं, किस तरीके से हम फरिश्तों से जो है इस दुनिया में ऐसे फरिश्ते जो खुदा के हुक्म से चीजों को मुनज्जम कर रहे होते हैं, हमारी जिंदगी के लिए भी हमारी हमारे माशरे में भी जो है ये फरिश्ते हमायत और मदद और नुसरत के लिए पहुंच सकते हैं। उसकी शर्त ये कि मैं और आप और इंसान जो है नफ्स परस्ती से दूर हो जाए। और अगली आयत में भी इसी बात की तरफ, आयत नंबर 40 में भी इस बात की तरफ इशारा किया जा रहा है। अगर आयत नंबर 40 आपके सामने पेश आए तो मैं उस आयत की भी तिलावत करता हूँ। आयत में है कि वह अम्मा मन खाफ मकाम रब्बी वनहा नफ्स अनिल हवा, के यहाँ पे जिसका मफहूम ये है जो शख्स अपने रब की बारगाह में पेश होने का खौफ रखता हो और नफ्स को अपनी ख्वाहिशात से रोकता हो तो यकीनन जो है वो आलम मलकूत से जुड़ सकता है। यकीनन वो शख्स जो है आलम मलकूत से जो है ताल्लुक कायम कर सकता है। बस शर्त उसके लिए ये है कि अपने नफ्स को बुरी ख्वाहिशात से रोकना होगा। बुरी ख्वाहिशात से मुराद यही है कि जो इंसान को गुमराह कर देती हैं, और उसका तरीक़ेकार यही कि आप कवानीन इलाही की जो है अहकामात इलाही को पूरा करेंगे, और तो ऐसे में जो है यूं आप नफ्स का मुकाबला कर सकते हैं और यूं आप जो आलमे मलकूत से जुड़ सकते हैं। ये बहुत प्यारी आयत है, और इसके जरिए से हम फरिश्तों से राबता कायम कर सकते हैं, और इस पाकीज़ा रूह से जो है एक पाकीज़ा जो है रूह जो ताकत है उससे हम अब कुव्वत हासिल कर सकते हैं। ऐसे में हमें चाहिए कि मलकूत और फरिश्तों से अपने राबते को महफूज रखें। अगली आयत की तरफ चलते हैं। अगली जो आयत अगर लेकर आए 6 नंबर आयत के बाद उसको हम बयान करते हैं। और एक चीज और नुकता बयान करते चलूं कि जो बड़ी सूरतें होती हैं जब उसमें हम तफक्कुर और ताकुल कर रहे होते हैं उसको सियाक के एतबार से मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया जाता है। जैसे कि आपके सामने मुख्तलिफ हिस्से यहाँ पे नजर आ रहे हैं। पहली 5 आयात को सब्ज रंग में आपको पेश किया गया और अगली आयात में नीले रंग में आपको बयान किया गया। देखिए इसको बयान करने से पहले मैं वो बताना चाहूंगा, इन आयात में दुनिया की हकीकत को वाजे किया जा रहा है, और इसकी मिसाल आपके सामने यूँ पेश करेंगे कि एक शख्स है उसके हाथ में धात की गेंद है और वो खतरा का बायस बन सकती है। किसी वक्त भी वो धात का जो है फट सकता है, और हम जितना भी उस कहेंगे उस शख्स को कहेंगे जो तुम्हारे हाथ में है ये तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, हम के इसको कहेंगे छोड़ दो, जितना भी समझाएं कि धात बहुत खतरनाक है और तुम्हारे लिए जिंदगी को तबाह कर सकता है। लेकिन क्या क्या होता है कि जैसी जो है हम इससे कुछ कदम पीछे हटते हैं अचानक ऐसे खौफनाक धमाके की आवाज जो है सबको दहशत ज़दा कर देती है। ऐसा हुआ कि बौसा औकात जंग जहानी अजीम दूसरी जंग अजीम में ऐसे वाकयात हुए कि वहां पे ऐसे बम थे जो फटे नहीं थे, लोग उसे चमकदार समझ रहे थे, उसके करीब चले गए और जब वो करीब गए तो उससे नुकसान का बायस बना। तो खारान बरादरान जो आज इस कुरान जिंदगी प्रोग्राम में आए हैं और आज जो हम सूरह नाजियात के में तफक्कुर ताकुल कर रहे हैं, दुनिया भी का किस्सा भी इसी तरीके से है। दुनिया भी इस गोले की तरह है, बल्कि इससे भी बुरा जो है बुरा जो है दुनिया बुरा बुरा का बाइस बन सकता है, बुरा और हमारे लिए खतरनाक बाइस बन सकती है। तो दुनिया की बसात याद रखिए कि बहुत मुख्तसर है, दुनिया की बसात बहुत जो हमारे सामने है, किसी वक्त भी हमारी हमें इसको अपनी जिंदगी लपेट सकती है, और ये एक हतमी कानून है, और ये सुनन इलाही में से एक सुनन है एक एक। और वाकया इंसान जो है इस दुनिया में उसने इतना अरसा नहीं रहना है, दुनिया आरजी है, ये दुनिया एक फानी है, और इसकी दुनिया की बसात एक मुख्तसर वक्त के लिए बचाई गई है। ऐसे में हम इन फरिश्तों का मजाक उड़ाना शुरू कर दें, ऐसे में हम समझे फरिश्ते हमारी तकलीफ के लिए आए हैं, तो हरगिज ऐसा नहीं है, बल्कि इंसान को चाहिए कि इस मुख्तसर वक्त के लिए आया है अपने ऐसे अमाल अंजाम दें जिससे आकबत बखैरी का बायस बने, और वो अमाल की अंजामदेही के बाद ही दुनिया की बसात लिपट जाए जब उसने नेक अमाल अंजाम दिए होंगे, और तमाम इंसान क़यामत की तरफ चले जाएंगे। तो दोस्तों, खारान बरादरन, इंसानों का किस्सा भी इसी तरीके से है जैसे इस जंगी गोले के साथ उसने मजबूती से चिपकी हुई है हमें, जिसका कहा जाता है कि इसे छोड़ दिया जाए, हम नहीं छोड़ते, हम जानना चाहते हैं कि अगर हमने इस गोले को ना छोड़ा तो जरूर बेजरूर इंसान के जो है परखचे उड़ा दिए जाएंगे। अगली आयत नंबर 7 और 6 और 7 में ये बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि उस रोज जो है कांपने वाले कांपेगी और इसके पीछे दूसरा लर्जा आएगा, यानी यहाँ पे जो हादसे सख्त जल्जले की बात की जा रही है कि यकीनन एक सख्त जल्जला आएगा, उसके बाद एक और जल्जला आएगा, यानी पहला जो रवायात में बात की जा रही है सूर आएगा जिससे पूरी जिंदगी या पूरी कायनात पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, और फिर दोबारा से एक सूर की आवाज आएगी जो दोबारा से इंसान को जिंदा किया जाएगा। बहुत खूबसूरत अगली आयात में बात की जा रही है, इस दुनिया की हकीकत की तरफ इशारा किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि एक सख्त जल्जला आने वाला है, इस जल्जले के बाद फिर जल्जला आएगा। अपने जहनों में इन लोगों का तसव्वुर कीजिए जो दुनिया को थामे हुए हैं, जो दुनिया के चिपके हुए हैं, और सोचें किस तरीके से सारी जिंदगी इस दुनिया वो सोचते हैं कि इस दुनिया में रहेंगे, जबकि ये जमीन इस वक्त तक लर्जा रहेगी जब तक हर शख्स जो है इसको छोड़ दे जो इसमें थामे हुए है। यानी बहुत खूबसूरत अंदाज में इन आयात में बात की जा रही है, और अगली 8 नंबर और 9 नंबर में बात की जा रही है कि उस दिन दिल उछल कर खल्क में आ जाएगा और आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि शुरू से ही तय था, इब्तदा से बात वाजे थी, जब इंसान इस दुनिया में आया और ये जो हो आया उस वक्त तय था कि हमें इस दुनिया को दोनों हाथों से गले नहीं लगाना, हमने इस दुनिया के साथ चिपके नहीं रहना, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि कुछ लोग इस दुनिया को खोने के डर से पूरी दुनिया को हड़प करना चाहते हैं, और लेकिन अंबिया जो आए, औसिया जो आए, इसी तरीके से ऐसे पैगंबर आए, इमाम आए, कि वो बताएं इंसानों को, समझाएं कि आपको इस किस्म के जो आपको इस प्यार है इस दुनिया से, ऐसा हरगिज ना हो, ये दुनिया खत्म हो जाएगी, ये दुनिया से हाथ खींच लेना चाहिए, इस दुनिया को तर्क कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत बुरा इंसान के लिए होना चाह रहा है। ऐसे में अगली आयात में इंसान को दो जाविये निगाह से देखा गया है, दो रवैये इंसान के अगली आयात में मौजूद है, मैं मुख्तसर से बयान करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। उनमें से एक ये कि कुछ ऐसे अफराद हैं जो क्यामत से पहले इस दुनिया से जान इससे दुनिया से पीछे छुड़ाना चाहते हैं, उस वो दुनिया जो आरजी है, वो दुनिया जो है मुख्तसर वक्त के लिए है, उस दुनिया से अपना अपनी जिंदगी की आकबत के लिए वो समझते हैं कि हमें दुनिया आरजी या आकबत का सामान इस दुनिया में हमें जो है उसको जमा करना है। बस पहला ग्रोह, पहला तरह के इंसान ये जो क्यामत से पहले दुनिया की हकीकत से आगाह हो गए हैं, और वो इस दुनिया से जो है जान छुड़ाना चाहते हैं, वो समझते हैं इस दुनिया में आए हैं ताकि ऐसे अमाल अंजाम दे सकें कि आखिरत में उनके लिए रुसवाई ना हो, ऐसे अमाल अंजाम दे सकें जो कुरान और अहले बैत जो है उनके लिए शफात का बाइस बने। बस एक ग्रोह जो इस इन आयात में बताया जा रहा है जो आपके सामने है, वो ये कि वो जो क़यामत से पहले इस दुनिया से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन दूसरे मुकाबले में इस इन आयात में आगे चलकर हम तलावत करते हैं, देखते हैं, बताया जा रहा है कि कुछ लोग जो है क़यामत के मंजर को जब देखेंगे उस वक्त कहेंगे हम दुनिया छोड़ने में मजबूर हैं, और ना चाहते हुए इंसान ने फिर इस दुनिया को तर्क कर देने, तो उसका अंजाम खारान बरादरान बहुत दर्दनाक होगा। बस इसीलिए एक ही रास्ता बचता है कि खुद दुनिया को तर्क कर दें, हम खुद दुनिया को छोड़ दें, ऐसा ना हो कि हम छोड़ दुनिया छोड़ने में मजबूर हो जाएं।
बिला शुबा यहाँ पे एक और नुकता मैं बताता चलूँ, एक और एतराज, एक शुबा आपके जहन में आ सकता है। खारान बरादरान, जो इस वक्त हम सूरह नाजियात की खिदमत में हैं और सूरह नाजियात के मेहमान बने हैं, वो ये है कि बिला शुबा दुनिया छोड़ने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप जो है जोहद, बेजा जोहद का अख्तियार कर लें और जो है दुनिया की जिंदगी गुजारने के लिए इससे इस्तेफादा ना करें, बल्कि यहाँ मुराद बेजा जोहद है, बेजा यानी गोशा नशीनी है जो बेजा है, और उससे तर्क करने के हवाले से बात की जा रही है। ऐसा ना हो कि इंसान दोनों हाथों से दुनिया को समेटने के लिए की बजाय जो है इस दुनिया से यानी दुनिया की नियमतों से फकत समझे कि अब्दी है उससे इस्तेफादा करना शुरू कर दे। ऐसे में एक शख्स जो है उसकी अच्छी जिंदगी है, अच्छा होता है, लेकिन ऐसे में जो अगली दुनिया के लिए आखिरत के लिए सही करता है, कोशिश करता है और वो तमाम जाहद को अपने सामने रखता है, तो उसका कोई हर्ज नहीं है। लेकिन यहाँ पे याद रखना चाहिए अगली आयत, आयत नंबर 35 से लेकर अगली आयत में हजरत मूसा का किस्सा है और फिरौन का किस्सा, इंशाल्लाह प्रोफेसर साहब इस पर रोशनी डालेंगे। लेकिन मैं कयामत के हवाले से जो है आपके सामने एक तस्वीर सामने पेश करना चाहता हूँ, जिसमें दुनिया की हकीकत का बयान किया जा रहा है, जिसमें हमें दुनिया की हकीकत को बयान किया जा रहा है, और ये बयान किया जा रहा है कि इंसान को क्यों खल्क किया गया है। मैं अगली आयात का थोड़ा सा आपके सामने तस्वीर आपके सामने पेश करता हूँ। आयत नंबर 35 से लेकर आयत नंबर 38 तक में ये बात बयान की जा रही है कि बाज अफराद ऐसे हैं जिन्होंने जिंदगी का इंतखाब किया है। उनका जिंदगी का मकसद क्या है? उनका जिंदगी का मकसद मनसब है, उनकी जिंदगी का मकसद जो है पेशा है, उनकी जिंदगी का मकसद जो है शोहरत है, उनकी जिंदगी का मकसद नाम और नमूद है, एक ये अफराद है। और आयत नंबर 40 में एक और हालत बयान की जा रही है कि जिसमें कहा जा रहा है कि इंसान जो है हवाई नफ्स से इज्तनाब करता है, और जो शख्स अपने रब और खौफ रखता है कि अपने रब की बारगाह में उसने पेश होना है और अपने नफ्स की ख्वाहिशात को, नफ्स को अपनी ख्वाहिशात से रोकता है, वो दूसरे किस्म के लोग बयान किए जा रहे हैं। ये नहीं कहा जा गया इस आयात में कि जिनके पास दुनिया नहीं है ये जिनके पास दुनिया है, बल्कि इस आयत में बयान किया जा रहा है आयत नंबर 40 में कि वो जो है अपनी ख्वाहिशात के ताबे नहीं है और खुदा से, वो हमेशा अपने खुदा से डरता है। खारन बरादर की जो आयत नंबर 40 बहुत खूबसूरत है, जिसमें कहा जा रहा है वह अम्मा मन खाफ मकामा रब्बी वनहा नफ्सा अनिल हवा। ये बहुत खूबसूरत ताबीर है कि ये नहीं कहा गया कि जिनके पास दुनिया नहीं है ये जिनके पास दुनिया है, बल्कि कहा जा रहा जो अपनी ख्वाहिशात के ताबे नहीं है वो अपने खुदा से डरता है, और ऐसे में अगली आयत में कहा जाता है कि वो जो है दुनिया में रहते हुए इस असल जन्नत का जो है यहाँ पे दीदार कर सकता है। ये एक मुख्तसर सी मैंने आपके सामने तस्वीर खींची है, जिसमें कोशिश की गई हमने इस आयत को इर्तबात देते हुए और इस सूरह के बाद हिस्सों का मैंने इशारा किया, और अगली आयत का इंशाल्लाह ताला अगले बाद हिस्सों का जो है प्रोफेसर साहब इस पर रोशनी डालेंगे। मैं खुलासा आपके सामने पेश कर सकूं वो ये है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि दुनिया में जब इंसान आता है बहुत सारी चीजों का सामना करता है, और वो बस औकात वो चीजें उसको मकसद दूर कर देती हैं, वो दुनिया की लज्जतें हो सकती हैं, वो दुनिया की गफलतें हो सकती हैं, वो दुनिया की हैरतें हो सकती हैं। ऐसे में इब्तदाई आयात में फरिश्तों का जिक्र आया और बताया जा रहा है कि फरिश्ते इंसान की मौत को के वक्त उसकी रूह को कब्ज कर लेंगे, और अगली आयात में बताया जा रहा है कि दुनिया की क्या हकीकत थी, और मैंने हमने बताया कि अब हम इन आज भी फरिश्तों से मलाइका से इस्तफादा कर सकते हैं, और आखिरी आयत के मुताबिक आपको भी ये पैगाम दिया, ये बताया कि अगर हम अपनी ख्वाहिशात पे जो है काबू रखेंगे और अपने अपने रब खुदा के ताबे रहेंगे और अपनी ख्वाहिशात को खुदा के ताबे करेंगे, तो यकीनन ये दुनिया हमारे में रहते हुए हम अपनी जन्नत बना सकते हैं। इंशाल्लाह गुफ्तगू को जारी रखते हैं आपके सामने, जायद भाई अपनी इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह इस सलावात के साथ।
अल्लाहुम्मा सल्ले
अल्लाहु
अला
सल्ले अला मोहम्मद व आले
मोहम्मद
मोहम्मद व
वाजिल
अजील सारा
फरज।
जहां। जी
जी मेरी आवाज आ रही है?
जी आ रही है।
जी उस्ताद मोहतरम ने बहुत खूबसूरत तरीके से एक इजमाली खाका आपके सामने रखा है सूरह का। आप चूंकि वक्त कम है तो मैं जिस तरह आपके अब नॉलेज में आ चुका है कि हमने सूरह को 6 हिस्सों में तकसीम किया, आयत नंबर 1 से 5, 6 से 14, 15 से 26, 27 से 33, 34 से 41 और 42 से 46। और पहले हिस्से पे चूंकि तफसील से बात हो चुकी है तो उस पर मैं ज्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगा, उसके बाद हर हिस्से में हम इंशाल्लाह कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स बयान करेंगे। उस्ताद मोहतरम जिसको तहारत के नुकात कह रहे थे, तहारत के नुकात का मतलब है कि प्रैक्टिकल पॉइंट्स, एक्शन पॉइंट्स जिनको हम अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। तो पहले हिस्से में फरिश्तों की जिस तरह के यहाँ पे गुफ्तगू हुई है और इस पे चूंकि बात हो चुकी है, मैं सिर्फ एक पॉइंट की तरफ इशारा करूंगा कि इन फरिश्तों की जो खसूसियात बयान हुई हैं उन पे अगर आप गौर करें तो उनकी अतात का जिक्र है, यानी ऐसे फरिश्ते हैं जो अल्लाह ताला के हुक्म की बजावरी में किसी सुस्ती से काम नहीं लेते, बहुत एफिशिएंट हैं, बहुत ज्यादा मुती हैं। और हमें यह भी मालूम है कि इंसान अशरफुल मखलूकात है, यानी इंसान फरिश्तों से अफजल है, तो हमें देखना चाहिए कि हम अल्लाह ताला के अहकाम की बजावरी में कितने एफिशिएंट और कितनी सुरत से काम लेते हैं। अगरचे हम अशरफुल मखलूकात होने का दावा करते हैं, खलीफतुल्लाह होने का दावा करते हैं, लेकिन क्या हम वाकई कम अज कम फरिश्तों को फॉलो करते हैं कि उसी तरह हम अल्लाह ताला के अहकाम को बजा लाते हैं जिस तरह फरिश्ते जहाँ पे बयान हुए हैं कि वो कितनी तेजी से सूरत के साथ बगैर सुस्ती के और प्लानिंग के साथ अल्लाह ताला के अहकाम को जो है वो बजा लाते हैं। मजीद इस पर आप सोचिए कि हम अगले हिस्से की तरफ जाते हैं और दूसरे हिस्से के अंदर क़यामत का एक मंजर अल्लाह ताला ने पेश किया है और यहाँ पे फरमाया है कि उस दिन जलजला आएगा और उसके पीछे दूसरा जलजला आएगा, यानी वो जो दो दफा सूर फूंका जाएगा उसका जिक्र है। और कुछ दिल उस दिन मुस्तरिब होंगे, उनकी निगाहें झुकी होंगी और कहते होंगे कि हम इब्तदा की तरह वापस लाए जाएंगे जब हम खोखली हड्डियां हो चुके होंगे। कहते हैं फिर तो ये वापसी घाटे की होगी, फिर ये वापसी यकीनन सिर्फ एक झिड़की होगी, झिड़क होगी, और फिर वो यकायक मैदान हश्र में मौजूद होंगे। अच्छा, अगर एक एंगल और मैं आपको दे रहा हूँ कुरान मजीद की आयात में गौर करने का, कि कुरान मजीद पे आप इस एंगल से भी गौर कीजिएगा कि मनाजिर किस तरह बदलते हैं। मिसाल के तौर पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा आप अगर तिलावत कर रहे हैं या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कोई वाकया पढ़ रहे हैं, तो थोड़े से एंगल से भी गौर किया करें कि मंजर भी बदलते हैं कुरान की आयात में, और ये भी बहुत एक फसाहत और बलागत का एक नमूना है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो पहली जो चार आयात है उनके अंदर क्यामत का मंजर बयान किया गया है कि उस दिन ये कैफियत होगी कि एक जलजला आएगा, दूसरा जलजला आएगा, और लोगों की दिल की एक कैफियत होगी जो उनके चेहरे से जाहिर हो रही होगी, उनके दिल बेचैन होंगे और वो उनके चेहरे से और उनकी आंखों से जाहिर होगा। लेकिन अगली जो आयात हैं 10, 11 और 12, इसके अंदर अल्लाह ताला दोबारा दुनिया में हमें ला रहा है कि ये उन लोगों का अंजाम है, लेकिन अब देखो ये अभी दुनिया के अंदर क्या कह रहे हैं। तो दुनिया के अंदर वो कहते हैं कि हम वापसी की तरफ पलटाए जाएंगे जब हम हड्डियां बन चुके होंगे और जो है ये बड़ी घाटे की वापसी होगी, और फिर अल्लाह ताला दोबारा क़यामत की तरफ हमें लेके जा रहा है। तो यानी हमारे लिए भी एक पैगाम है फसाहत और बलागत के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस तरह आपने जब पैगाम देना है तो आपने अपने मौजू को किस तरह से बदलना है, फिर मौजू पे वापस आना है। अब इसमें एक नुक्ता है हमारे लिए, वो ये है कि यहाँ पे यकुलूना का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। मैं से चीदा चीदा नुकात बयान करूंगा यहाँ पे। यकुलूना का मतलब है कि ये फेले मजारे है, यानी वो कंटिन्यूअसली ये कहते थे, उनकी लॉजिक ही हमेशा यही होती थी कि हम क्या वापस दोबारा दुनिया में जाएंगे, यानी जब दोबारा हम जिंदा किए जाएंगे जब हम खोखली हड्डियां हो चुके होंगे। यकुलूना यानी कॉन्टिन्यूअसली ये कहते थे कि जब हम हड्डियां बन चुके होंगे तो क्या हम वापस आएंगे, यानी दोबारा हमें जिंदा किया जाएगा, यानी हमारा जो हमारी हमें दोबारा जिंदगी दी जाएगी। और यहाँ पे कालू है, कहते हैं ये तो वापसी घाटे की होगी। यहां से हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि ये पहली बात वो कंटिन्यूअसली कहते थे, और दूसरी बात वो कभी कभी कहते थे कि अगर वाकई ये बात जो नबी फरमा रहे हैं ये सच हुई तो ये तो बहुत घाटे का सौदा होगा। यानी इंसान एक मौके पर इंसान के पास हिदायत जरूर आती है अगरचे उसको झुठला दे, और ये सूरह में हम मुख्तलिफ जगहों पर और भी इसको देख सकते हैं। यानी जब वो कालू का लफ्ज आया तो उसने लगा कि ये वो नुक्ता था, वो पॉइंट इन लाइफ था जब उनको रियलाइज होता था कि अल्लाह के नबी सही कह रहे हैं कि इस दुनिया के बाद भी जिंदगी है, लेकिन वो फिर इसको झुटला देते थे, अपनी जमीर की आवाज को दबा देते थे, और वो फिर वही पुरानी बात में दोबारा आ जाते थे कि नहीं, हड्डियों को अल्लाह ताला कैसे जिंदा करेगा। तो ये हमारी जिंदगी में भी होता है कि हमें एक लेवल आता है कि हुज्जत तमाम हो जाती है, अल्लाह ताला से हमें दुआ करनी चाहिए कि जब हम हमारे पास दलील आ जाए तो हम उजर खाही से काम ना लें बल्कि उस दलील को कबूल कर लें, क्योंकि कुरान सबके लिए बहरहाल हिदायत है। और आखिरी दो आयात में भी फिर अल्लाह ताला कह रहा है कि हड्डियों को जिंदा करना अल्लाह के लिए कौन सा मुश्किल है, सिर्फ एक एक झटके की बात है, एक झिड़की की बात है, और तुम कब्रों से यकायक मैदान हशर में जो हाजिर हो जाओगे। और यहाँ पे जो लफ्ज साहिरा इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब है नींद का उड़ जाना, यानी वो ऐसी कैफियत होगी कि जब लोगों की जो नींदें हैं वो उड़ जाएंगी। यानी चूंकि मैदान हश्र में ऐसा माहौल होगा कि इंसान जो है उसका चैन जो है वो खत्म हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे एक बहुत ही हिला देने वाली जो है वो ताबीर इस्तेमाल हुई उस दस्ते के अंदर। बहरहाल मजीद नुकात भी आप उन पर गौर कीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि एक ओवरव्यू पूरी सूरा का आपको प्रैक्टिकल पॉइंट्स के हिसाब से भी मैं दे दूं, ताकि कोई दस्ता रह ना जाए, कोई हिस्सा रह ना जाए सूरा का। उसके बाद तीसरे दस्ते में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का किस्सा बयान हो रहा है, जो कि कुरान मजीद में बहुत ज्यादा बयान हुआ है। और आपको पता है कि सबसे ज्यादा जिक्र मूसा अलैहिस्सलाम अम्बिया अलैहिस्सलाम में कुरान मजीद में आया है। तर्जमा नजर देखिएगा, वाकया आपके लिए नया, लेकिन इसमें से हम कुछ निकालते हैं। तो फिरौन ने क्या किया था, फिरौन ने तुगयान किया था, तुगयान। और उस कुरान मजीद में बहुत ज्यादा आया है कि तुगयान जो है ये बहुत ही खतरनाक एक कैफियत है जिसमें इंसान मुब्तला हो जाता है, यानी लिमिट्स को क्रॉस कर देना और ये कहना कि बस जो मैं समझता हूँ वही सही है, और कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है, अल्लाह ताला या अंबिया का जो कानून है उसको मैं नहीं मानता। मूसा अलैहिस्सलाम का अगर आप अंदाजे बयान देखें, अल्लाह ताला उनको कह रहे हैं कि तुम उसको बुलाओ, आप उसको बुलाएं और उसे कहें, यानी दावत दें, और उसे कहें कि क्या तुम पाकीजगी इख्तियार करने के लिए आमादा हो। तो अगर आप अंदाज पे गौर करें तो है इंतहाई शफकत भरा अंदाज है। तो यहां से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं और एक लेसन हमें मिलता है कि जब आपने तबलीग करनी और किसी तक हक का पैगाम पहुंचाना है, तो आपके अंदर नरमी होनी चाहिए, खुलूस होना चाहिए, और खैर खाहाना अंदाज में आपने पैगाम पहुंचाना है। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा काफिर है फिरौन, बल्कि सिर्फ काफिर नहीं है बल्कि तागी भी है, मुकाबले पे भी उतर आया है, वो जो रब होने का दावा भी कर रहा है, लेकिन उससे नरमी से और बहुत ही शफकत से बात कर रहे हैं पहले, जो पहली तबलीग के लिए मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं। तो हमारे लिए भी यहाँ पे सबक है कि जब हमने दीन का पैगाम पहुंचाना है तो हमारे अंदर नरमी होनी चाहिए। अक्सर हम लोग ये कर रहे होते हैं कि हमें दो चार बातें पता चल जाती हैं तो हम दूसरों की तहकीर करना शुरू कर देते हैं कि तुम इतनी सी बात नहीं पता, तुम तो दीन से बड़े दूर हो, आज तक तुम करते क्या आ रहे हो, तुम इतनी सी बात नहीं पता। तो नहीं, ऐसा नहीं करना। दुनिया के सबसे गुमराह शख्स को भी नबी खुदा जो है वो एक शफकत भरे अंदाज में जो है वो बुला रहे हैं। इसका एक रेफरेंस मैं आगे और भी दूंगा कुरान मजीद से। दूसरा नुकता हम यहां से निकाल सकते हैं कि सबसे पहले तज़किया और उसके बाद है हिदायत। तज़किया के बाद हिदायत इंसान हासिल कर सकता है, अगर इंसान तज़किया की तरफ नहीं आता तो वो हिदायत हासिल नहीं कर सकता। और जब वो हिदायत हासिल कर लेगा तो फिर उसके अंदर खौफ खुदा पैदा होगा, और जब खौफ खुदा पैदा होगा तो इसी सूरत से हम आगे नुक्ता एक निकालेंगे, तब उसके ऊपर अंजार का असर होगा, यानी तब वो बुरी चीजों से बचेगा और सही चीजों की तरफ जाएगा, यानी हिदायत के रास्ते पर जो है वो चल पड़ेगा। तो कम अज कम एक लेवल तक हमें तज़किया हासिल करना चाहिए, फिर हम सही हिदायत के रास्ते पर चलेंगे और फिर सही मानों में खौफ खुदा हमारे अंदर पैदा होगा। और एक और नुकता इसमें यह है कि ये सब कुछ जब हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे शफकत से बात की, उसे दलील से बात की, उसको आयत दिखाई यानी मुआइजे दिखाए, तो उसने क्या किया, उसने तकजीब की और नाफरमानी की। तो यहां से भी हम एक नुकता निकाल सकते हैं कि तकजीब अगर कोई करता है, यानी किसी के सामने हक आ जाता है, उसको वो झुठलाता है, तो उसका नेचुरल इफेक्ट यह है कि वो गुनाह के रास्ते पर चल पड़ेगा। तो तकजीब रिजल्ट्स इन डिसोबीडियंस, यानी जब तकजीब आप करते हैं, एक हक आपके सामने आ गया और आप उसको झुठला देते हैं, तो फिर रास्ता बदल जाता है, फिर इंसान इस्यान के रास्ते पर चल पड़ता है। और यहां पे नजर आ रहा है कि उस रास्ते पे चलते चलते वो कहां तक पहुंच गया, उसने सबसे पहले कहा, कुरान से हमें पता चलता है कि मिस्र मेरा है, मिस्र के दरिया मेरे हैं, मिस्र की जमीनें मेरी हैं। यहां पे रुका नहीं, फिर अगले लेवल पे गया, उसने कहा नहीं मैं इलाह हूं, मैं माबूद हूं तुम्हारा, मेरी इबादत करो। फिर यहां पे भी नहीं रुका, फिर उसने कहा कि नहीं मैं रब आला हूं, यानी वो खुद बहुत सारे रब उसके थे, बहुत सारे अरबाब को मानता था, कहा उनसे भी मैं बड़ा हूं। तो ये नुक्ता भी हमें यहां से मिलता है कि जब इंसान तकजीब करता है तो वो इस्यान के रास्ते पे चल पड़ता है, और फिर इस्यान के रास्ते पे चलते चलते कोई लिमिट नहीं है कि इंसान कहीं पे जाके रुक जाए, यहां तक कि अपने आप को खुदाओं का खुदा भी वो कह बैठता है और उसको महसूस नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। और एक और नुक्ता यहाँ पे ये यह है कि अल्लाह ताला ने कहा कि जब वो इस्यान के रास्ते पे चलते चलते अपने आप को खुदा कह बैठा और जराम भी उसने किए, तो हमने उसे आखरत और दुनिया के अजाब में मुबतला किया। अब फिजिकली दुनिया पहले और आखिरत बाद में है, लेकिन यहां अल्लाह ताला ने आखिरत का पहले जिक्र किया कि हमने उसे आखिरत के अजाब में गिरफ्तार किया और दुनिया के अजाब में। अब इस पर आप भी गौर कीजिएगा कि अल्लाह ताला ने ऐसा क्यों बयान किया कि आखिरत को पहले क्यों बयान किया, हालांकि फिजिकली भी ऐसे हुआ कि पहले उसे दुनिया का अजाब हुआ, वो गर्क हो गया समंदर के अंदर, फिर आखिरत में अभी बरजख में उस पर अजाब हो रहा है, फिर क्यामत के दिन भी होगा, जहन्नुम में जाएगा। ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं ये नुकता कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे आखिरत का जिक्र क्यों किया। आप इस वाक्य के ज़ेल में भी इस पे गौर कीजिएगा और इस सूरा के तनाजुर में भी कि जिसका मौजू माद है कि अल्लाह ताला ने आखिरत के अजाब का पहले क्यों जिक्र किया और दुनिया के अजाब का बाद में क्यों जिक्र किया। और अगर हम आगे चौथे हिस्से की तरफ, ये तो मुझे कन्फर्म है, शायद ये आपके साथ मटीरियल शेयर भी हो जाए तो आप मजीद नुकात को देख लीजिएगा, काफी ज्यादा नुकात जो है मार्क्स कर सकते हैं। तो तदब्बुर की खूबसूरती ये है कि आपके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल सामने आते हैं। चौथे हिस्से को मैं ज्यादा डिटेल में बयान नहीं करूंगा क्योंकि सूरह नबा पर भी ये मतालब बयान हुए हैं और ये कुरान मजीद की एक उमूमी रविश है कि माद के ऊपर आफाक को हम अल्लाह ताला जो है वो एक दलील के तौर पर पेश करता है। खुद दुनिया के ऊपर आप गौर करें तो आपको नजर आता है कि हर चीज की एक इब्तदा है और एक इंतहा है। मिसाल के तौर पर बारिश जब बरसती है तो उससे पहले बादल बनते हैं और एक पूरा एक सीक्वेंस है आपको मालूम है कि बुखारात उठते हैं, बादल बनते हैं, बारिश बरसती है, फिर जमीन से जो है वो सब्जा निकलता है, फिर वो खुश्क हो जाता है, खत्म हो जाता है और ये साइकिल रिपीट होता है। और इस तरह के दलाल अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जा बजा पेश किए हैं। तो इस चौथे हिस्से में भी ऐसा ही है कि आसमान और जमीन का जिक्र है और दिन और रात का जिक्र है। और ये मतालब तीसरे पारे में चूंकि काफी ज्यादा है, सूरह नबा में भी आए थे और सूरह शम्स को जब हम पढ़ेंगे, सूरह वल्लैल को पढ़ेंगे और सूरों को पढ़ेंगे तो वहां पे ये मतालब आएंगे, अगरचे बहुत अहम है लेकिन वक्त की कमी की वजह से इनको मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, लेकिन आप इस पर गौर कीजिएगा। यानी महसूसात के जरिए भी अल्लाह ताला ने दलील दी है खुद अपने वजूद की कि यानी ये सब कुछ खुद से नहीं हो रहा, इसके पीछे कोई हस्ती है जो सब कुछ प्लान आउट कर रही है, और खुद ये दलील है एक मंतकी अंजाम की इस दुनिया की। पांचवें हिस्से के अंदर दोबारा अल्लाह ताला जो है क्यामत का मंजर यहाँ पे बयान कर रहा है दूसरे हिस्से की तरह, लेकिन और अंदाज से, और एक दफा फिर बहुत ही डराने वाला यहाँ पे एक मंजर हमारे सामने आ रहा है कि एक बहुत बड़ी आफत आएगी, बहुत बड़ी आफत आएगी और इंसान उस दिन अपना अमल याद करेगा और देखने वालों के लिए जहन्नम जाहिर कर दी जाएगी। जिसने सरकशी की और दुनियावी जिंदगी को तरजीह दी उसका ठिकाना जहन्नम होगा। अच्छा, अगर आपने गौर किया हो तो यहां पे लफ्ज क्या इस्तेमाल हुआ, तगा, फअम्मा मन तगा, ये और ये लफ्ज और कहां पे इस्तेमाल हुआ था, ये अभी अभी जो हमने देखा फिरौन के लिए, फिरौन के लिए भी यही था कि आए मूसा फिरौन के पास जाए क्योंकि उसने तुगयान किया। सेम वर्ड यहाँ पे दोबारा रिपीट हो रहा है, कहीं हम खुश फहमी में या गलत फहमी में मुब्तला ना हो जाएं कि अच्छा ये बात सिर्फ फिरौन के लिए थी। अल्लाह कह रहे नहीं, जो भी सरकशी करेगा, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सिर्फ फिरौन की बात नहीं है, फिरौन को हमने एज एन एग्जाम्पल पेश किया है, बट फिरौन के अलावा भी जो शख्स सरकशी करेगा और दुनियावी जिंदगी को तरजीह देगा उसका ठिकाना जहन्नुम होगा। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ज्ञान कोई भी करेगा तो वो जहन्नुम में जाएगा, सिर्फ फिरौन नहीं। और जिस तरह अभी उस्ताद मोहतरम ने भी बयान किया कि यहाँ पे ये नहीं कि जिसके पास दुनिया की नेमतें होंगी, बल्कि जिसने दुनिया की नेमत, दुनिया की जिंदगी को तरजीह दी होगी, यानी जब उसके पास दो राह आता है कि वो दुनिया को इंतखाब करे या आखरत को, तो वो दुनिया को इंतखाब करता है तो उसका ठिकाना जो है वो जहन्नम होगा, सिर्फ फिरौन नहीं, जो भी ये करेगा। और इसके अपोजिट है वो शख्स जो अपने रब की बारगाह में पेश होने का खौफ रखता है और नफ्स को ख्वाहिशात से रोकता है, उसका ठिकाना जन्नत है। यानी यहां पे भी हम ये नुक्ता निकाल सकते हैं कि सबसे पहले खौफ खुदा है और खौफ खुदा का नतीजा है कि इंसान अपने आप को ख्वाहिशात से रोके। अगर खौफ खुदा नहीं है तो वो ख्वाहिशात की पैरवी से नहीं बच सकता ऐसा शख्स। तो पेश खैमा है ख्वाहिशात नफसानी से बचने का खौफ खुदा। और ये सूरा में आखिर में समरी भी पेश करूंगा, ये नुक्ता रिपीटेडली आया है, खौफ खुदा, खशियत खुदा और अल्लाह के नबी की बातों का उस पे असर होना जो खौफ रखता है। तो खौफ खुदा बहुत अहम है क्योंकि शहीद मुतारी ने भी इस नुक्ते को बयान किया है एक और एंगल से जिसका मतलब ये है कि आप दुनिया के सख्त से सख्त कानून भी बना लें, जिस तरह वेस्ट के अंदर हैं, लोगों की कभी भी इसलाह नहीं हो सकती सिर्फ कानून बनाने से। कानून ये हो सकता है कि फसाद को रोक सकता है, पब्लिकली लोग शायद एक हद तक शर्म की वजह से गुनाह ना करें, लेकिन मुआशरे की इसलाह नहीं हो सकती जब लोगों के अंदर आप तब्दीली नहीं लेंगे। अंदर की तब्दीली का ये नतीजा होता है कि इंसान फिजिकली जाहिर में भी अच्छे अमाल अंजाम देता है। फिर अल्लाह का जब खौफ होगा तो लोग उसको नहीं भी देख रहे होंगे तो सीधे रास्ते पे रहेगा। तो इसलिए खौफ खुदा जो है वो पेश खैमा है ख्वाहिशात नफसानी से बचने का, और उसका रिजल्ट क्या, जन्नत। जिस तरह तुगयान का रिजल्ट हमने क्या देखा था, तुगयान किस किस में रिजल्ट होता, तुगयान का इस्यान में, और इस्यान का रिजल्ट क्या
जहन्नम
निकलता है, जी
दोजख।
जी और इस्यान का रिजल्ट क्या होगा, ख्वाहिशात नफसानी की पैरवी, दुनिया को तरजीह देना, और दुनिया को तरजीह देने का रिजल्ट है जहन्नम। और उसके बिल्कुल अपोजिट तो ज्ञान के मुकाबले में क्या, खौफ खुदा। खौफ खुदा का क्या नतीजा है, ख्वाहिशात से बचना, और उसका रिजल्ट क्या है, जन्नत। अच्छा एक और चीज यहाँ पे है, एक अदबी नुकता है कि यहाँ पे अल्लाह ताला बयान कर रहा है कि देखने वालों के लिए जहन्नम जाहिर कर दी जाएगी। अल्लाह ताला ये नहीं कह रहा कि जहन्नम पैदा की कर दी जाएगी। तो अगर आपको याद हो कल उस्ताद बाकिर चीचिया ने ये नुकता बयान किया था कि जहन्नम या जन्नत वो है ऑलरेडी हमारे अंदर है, जाहिर उस दिन होगी बहुत सारे लोगों के लिए। ठीक है, तो ये भी बड़ा अहम नुकता है कि अल्लाह ताला ये कह रहा है कि जहन्नम उस दिन जाहिर कर दी जाएगी, अगरचे एग्जिस्ट अभी भी करती है हमारे अमाल की सूरत में। एक और नुकता थोड़ा सा ग्रामर के लिहाज से है लेकिन सब लोगों को आई होप समझ आ जाएगा। यहाँ पे लफ्ज है यतज़क्करो, फेले मजारे है जो अरबी जानते हैं, यानी इसमें इस्तमरार पाया जाता है, कंटिन्यूअस टेंस के सेंस में भी इसका मतलब अरबी में लिया जाता है। यानी इसका मतलब है कि क्यामत के दिन इंसान बार बार अपने अमल को याद करेगा जो उसने कोशिश की होगी। ये नहीं कि एक दफा उसको याद आएगा कि मैंने जिंदगी कैसे गुजारी, बार बार वो याद करेगा कि मैंने जिंदगी में क्या कोशिश की थी। तो ये भी बड़ा एक अहम नुक्ता है कि उस दिन हसरत होगी इंसान को, रिपीटेडली अपने अमल को याद करेगा जब बड़ी आफत आएगी, जहन्नम जाहिर कर दी जाएगी, दो ग्रोहों में लोग तकसीम हो जाएंगे। एक ग्रोह वो जिसने तुगयान किया, इस्यान में मुबतला हुआ, इस्यान के रिजल्ट में वो दुनिया को उसने तरजीह दी और अंबिया के मुकाबले में आ गया और जहन्नुम में चला गया, और उसके अपोजिट खौफ खुदा रखने वाला शख्स और ख्वाहिशात से दूर रहने वाला शख्स। आखिरी हिस्से के अंदर भी यही बात जारी है, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि एक दफा फिर मंजर बदल रहा है और अल्लाह ताला फिर दुनिया में हमें ला रहा है, और पाक पैगंबर से फरमा रहा है अल्लाह ताला कि लोग आपसे क्यामत के बारे में पूछते हैं कि कब वाकई होगी। आपका काम हकीकत को बयान करना है, डेट बताना आपका काम नहीं है। आपका काम है बताना कि क्यामत आनी है, आपका काम डेट बताना नहीं है, क्योंकि ये बता भी दिया जाए तो उसका फायदा नहीं है। ये भी एक नुक्ता इंपॉर्टेंट है। और यहां पे आप देखिएगा कि दोबारा खशियत का वर्ड आया है कि आए हबीब, आपका काम सिर्फ डराना है उसको जो खशियत रखता है। आप मुंजिर हैं और वही डरेगा जो उस जिसके अंदर खौफ खुदा होगा। तो ये खौफ खुदा का लफ्ज बहुत ज्यादा, ये जो कंसेप्ट है ये काफी दफे सूरह में रिपीट हुआ है। और क्यामत के दिन जब लोग अल्लाह
ओके
ताला जी
मुकम्मल हो गया जाहिद भाई। जी
बस 2-3 मिनट और जी बस इसको मैं सम अप
बिस्मिल्लाह
कर
बिस्मिल्लाह
जी। तो
जी
क्यामत के
बिस्मिल्लाह
दिन जब इंसान हाजिर होगा अल्लाह ताला के सामने तो उसको ऐसे लगेगा कि जैसे वो दुनिया में एक सुबह या एक शाम रहा। और ये मकसद, ये जो मतलब है कुरान मजीद में और जगहों पे भी बयान हुआ, जैसे कि सूरह अंबिया की पहली आयत में कि अल्लाह ताला कह रहा है कि लोगों के हिसाब का वक्त आ गया है लेकिन वो गफलत में पड़े हुए हैं। तो कुछ लोग इसका मतलब ये लेते हैं कि इसका मतलब है कि जैसे इंसान मरता है तो उसका हिसाब गोया शुरू हो जाता है। और ये हम क्यामत के मानों में भी लें, जिस तरह सूरह कमर में है कि क्यामत आ चुकी है, तो यानी जो चीज यकीनी हो उसका मतलब है कि वो आ चुकी है, यानी उसके आने में गोया कोई देर नहीं है। तो ये एक समरी थी, मैं सिर्फ दो नुकात, आई होप कि 2 से 3 मिनट में इसको खत्म कर लूंगा, कि कुल्ली तौर पर अगर हम बात करें तो सूरह सूरह नाजियात जो है वो, अगरचे हम बहुत ज्यादा नुकात निकाल सकते हैं लेकिन कुल्ली तौर पर हम बात करें तो एक है माद पर ईमान। आखिरत पर अगर इंसान का ईमान होगा तो वो इसलाह के रास्ते पर चलेगा और वो ख्वाहिशात से दूर रहेगा, और अगर नहीं करेगा तो वो रास्ते से हट जाएगा। तो एक रविश है तदब्बुर के अंदर, इस तरह शुरू में उस्ताद मोहतरम ने भी बयान किया मुख्तलिफ रविशें हैं, तो उनमें से एक रविश है कुरान को खुद कुरान से समझना। तो कुरान मजीद में सूरह मोमिनून में आयत नंबर 74 में है कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते वो रस्ते से मुनहरिफ हो जाते हैं। यानी हो सकता है एक शख्स, एक तो काफिर है उनका तो मामला और है, लेकिन एक शख्स अल्लाह को मानता है लेकिन आखिरत पे उसका ईमान नहीं है, सिर्फ इल्म है ईमान नहीं है, तो वो भी रस्ते से जो है वो मुनहरिफ हो जाएगा। और सूरह सौद के अंदर अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अम्बिया का जिक्र करने के बाद उनकी तारीफ की है कि वो मेरे खालिस बंदे थे। अम्बिया जो मुखलिस बंदे थे और उनके खलूस की एक वजह आखरत का जिक्र, आखरत को बहुत ज्यादा याद किया करते थे। तो इस तरह अभी हमने देखा कि आखरत का जो जिक्र है या अल्लाह का खौफ है वो हमें ख्वाहिशात नफसानी की पैरवी से बचाता है। तो एक और इसका फायदा ये है कि वो हमारे अंदर खलूस पैदा करता है। जब हमें पता है कि हमारा हर अमल क़यामत के दिन जाहिर होगा और अल्लाह ताला के पास हर चीज का रिकॉर्ड है, तो हमारे अंदर खलूस पैदा होगा जिसके आला तरीन दर्जे पर आइमे हुदा और अम्बिया अलैहिस्सलाम थे। तो ये भी आखरत के जिक्र का और आखरत को याद रखने का एक रिजल्ट है। और दूसरा कुल्ली नुकता है खशियत, जिसका मैंने आपके सामने दो तीन दफा जिक्र किया। आयत नंबर 19 में मूसा अलैहिस्सलाम भी फिरौन को नसीहत कर रहे हैं कि खौफ खुदा करो। 26 आयत में ये जिक्र हो रहा है कि फिरौन के अंजाम उन लोगों के लिए इबरत है जो खौफ खुदा रखते हैं। और पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आयत 45 में कहा जा रहा है कि आपका काम कयामत का दिन बताना नहीं है कि किस दिन आएगी, किस डेट को आएगी, बल्कि आपका काम इंतजार करना, और इंतजार का इफेक्ट सिर्फ उस पर होगा जो खौफ खुदा रखता होगा। और ये मतलब बहुत ज्यादा आयात में है, मैं सिर्फ तबरकन पढ़ के आपसे ज्यादा चाहूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ही सॉरी सूरह ताहा के अंदर अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहा है कि कुरान हमने आप इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप मुशक्कत में पढ़ लें, आपका काम है पहुंचाना अल्लाह के पैगाम को, और इस पैगाम से असर वही लेगा जो खौफ खुदा रखता होगा। बिल्कुल सूरह नाजियात की आखिरी दो तीन आयात की तरह यहाँ पे मतलब बयान हो रहा है। और यहाँ पे भी सूरह नूर में भी अल्लाह ताला बयान कर रहा है कि जो अल्लाह की इताअत करता है और उसके रसूल की इताअत करता है, खौफ खुदा रखता है और उसकी नाफरमानी से बचता है, ऐसे लोग ही कामयाब हैं। और मुख्तलिफ और जगहों पे भी ये मतलब आपको कुरान मजीद में जो है बहुत जगहों पे मिलेगा कि खौफ खुदा जो है बुनियाद है इंसान की इस्लाह के लिए। उम्मीद है एक कुली आपके सामने आ गया होगा सूरह का। अब मजीद जो है वो जितना तदब्बुर करेंगे उतने नुकात आपके सामने मजीद भी आएंगे इंशाल्लाह। हम सवालों का ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, और अभी भी मेरे ख्याल में शायद आंसर सेशन होगा। आपका बहुत शुक्रिया। मैं अभी ओवर करूंगा दोबारा आदि मोहतरम को कि उसको समाप्त करें। बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया आगा जाहिद, आपने बहुत बेहतरीन सूरह नाजियात को बयान किया है, बहुत बेहतरीन। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो भी पूछ ले, नहीं तो मैं डॉक्टर अली अब्बास आगा साहब आपसे चाहूंगी कि अगर आपने कोई नकात बयान करने हो तो आप वो बयान करें।
जी सवाल है।
मैं एक बस सवाल, पहले सवाल ले लेते हैं उसके
जी
बाद
जी
एक दो जुमले मैं बयान करना चाहूंगा कि कैसे अपनी जिंदगी में सूरह नाजियात को जारी कर सकते हैं, कैसे इस सूरह में जो हकायक बयान किए जा गए हैं उसके साथ जिंदगी गुजार सकते हैं, कैसे जो है हम उसमें जो हमारे लिए नुकात बयान किए बड़े खूबसूरत अंदाज में बरादर जाहिद भाई ने, कैसे हम उन नुकात को अमली जामा पे जा सकते हैं। इसको कहते हैं कि सूरह में तहारत करना, इसको कहते हैं कि सूरह के मकसद तक पहुंचना, इसको कहते हैं तफक्कुर तो अक्ल के बाद जो आकबत जो सूरह में बयान की गई है उसको लेना। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि सूरह का मकसद यही है और जो आपको बयान किया जा रहा है यही है कि हम जो हैं इस दुनिया की हकीकत को जाने के, और ये जाने के इंसान को क्यों खल्क किया गया, ये भी आपके सामने पेश आया कि इंसान को क्यों खल्क किया गया। यहाँ पे एक बात जो बड़ी अहम है वो ये है कि हमें ये सूरह बताती है कि जिंदगी गुजारने के लिए हमें दुनियावी असीरी से निकालना चाहती है ये सूरह आई है, ताकि हमें दुनिया की जो असीरी है उससे निजात ले। और वो कैसे मुमकिन है कि हम आकाम वो इस तरीके से मुमकिन है कि हम आकामात इलाही पे पैरवी करें और नेकियों की तरफ जो है खूबियों की तरफ आगे कदम बढ़ाएं, तभी मुमकिन है कि हम दुनिया की असीरी से निकल आए। अगर हम तमाम मामलात में खुदा की तदबीर हमारी जिंदगी में शामिल हो जाए तो हम जो है दुनिया की हकीकत को जान सकते हैं और इंसान यूं दूसरी मखलूकात से बरतर हो सकता है। अगर देखा जाए तो दुनिया की असीरी की वजह से बहुत सारी चीजें ऐसी आती है कि इंसान جو ہے اصل ہدف سے، اصل مقصد تک اس کو کھو دیتا ہے، اور اگر یہ سورہ نازیات کو اپنی زندگی میں شامل کر لے تو دنیا میں رہ کر بھی دنیا میں زندگی نہ گزار سکتا ہے بلکہ آخرت میں زندگی گزارتا ہے. ابھی بھی آج جب دنیا میں ہے تو ہم آخرت میں رہ کے زندگی گزار سکتے ہیں، اور یوں اطمینان قلب کے ساتھ جو ہے اپنی منزل کو، اپنے راستے کو جاری رکھ سکتے ہیں. اور سورہ نازیات اس لیے آئی ہے تاکہ ہم اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور خدا کو، خدا کرے کہ ہم آخرت کے لیے اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی سورہ نازیات کے ساتھ گزاریں، اور اپنی نفسانی خواہشات کو جو ہیں دبا دیں، اور دنیا کا انتخاب نہ کریں. دنیا میں رہیں لیکن اس کے ساتھ نہ رہیں بلکہ آخرت کے ساتھ زندگی گزاریں. اگر کوئی آدھا سوال ہے تو سوال لے لیتے ہیں، ورنہ پھر دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی.
جی بہت شکریہ استاد محترم. جی برادر آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا، سوال پوچھنا چاہتے تھے، بسم اللہ کیجیے.
جی سلام استاد. استاد میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بیان کیا، استاد زاہد شاہ سے میرا سوال ہے کہ خوف خدا ہونا چاہیے. میں اللہ کو رحمان و رحیم جانتا ہوں، مجھ سے غلطی بھی ہو جاتی ہے تو میں اسے تواب جانتا ہوں، تو کس طرح یہ خوف خدا میرے اندر شامل ہوگا، اس پہ تھوڑی سی اصلاح کر.
اصل میں نا اردو کی کچھ لیمیٹیشنز ہیں. یہ خوف کا ورڈ عربی میں خوف کا ورڈ بھی ہے، اور ہم خشیت، خوف اور انذار سب کا مطلب ہم خوف ہی کر رہے ہوتے ہیں. خشیت مطلب ان معنوں میں خوف نہیں ہے جو ہم اردو میں لے رہے ہوتے ہیں. خشیت یعنی کسی کی عظمت کا جو ایک آپ کے اوپر امپیکٹ ہوتا ہے نا، اب اور اس عظمت کے اور اس کی بزرگی کے امپیکٹ کی وجہ سے انسان کے اندر جو، اگین میں ورڈ پھر خوف ہی بولوں گا، لیکن ایک کیفیت جو پیدا ہوتی ہے دیٹ از خشیت. کیونکہ ہم خوف وہ ڈر کے معنی میں، اب ڈر یعنی جو خوف کا ورڈ عربی کا لفظ ہے اس کا مطلب ڈفرینٹ ہے. جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو خوف ہوا تھا جب ان کا جو عصا جو ہے نا اجدہا بن گیا تھا. اب خوف اس سینس میں ہوتا ہے کہ کسی چیز سے مجھے نقصان پہنچے، تو خوف کا جو ورڈ عربی میں خوف ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے. خشیت کا جو ایک روب اور دبدبے کی وجہ سے آپ کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی. مثال کے طور پر کوئی بزرگ اگر ہمارے سامنے، ہم آپس میں دوست جوان لوگ جب کوئی بیٹھے ہوں تو آپس میں ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ غلط نہ ہو مذاق، یعنی صحیح مذاق ہو، کوئی اخلاقی طور پر اس میں مسئلہ نہ بھی ہو، لیکن کوئی بزرگ آ جائے تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں، وہ جو ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں اس کو روک دیتے ہیں، حالانکہ وہ غلط نہیں کر رہے تھے. اچھا کیوں روکیں؟ اس بزرگ کے احترام میں. اب یعنی یہ خشیت تھوڑا سا یعنی اس اینگل میں میں لے کے جا رہا ہوں کہ اس کی ایک عظمت ہے اس بزرگ کی، اس کا ایک مقام ہے، جس کی وجہ سے ان کو لگتا ہے مناسب نہیں ہے کہ ہم اس کے سامنے اس طرح ہنسی مذاق کریں، اگرچہ بذات خود شاید اتنا برا نہ. مثلا نماز میں خشیت کا ہمیں کہا گیا نا سورہ مومنون میں، ان مومنون کو کامیاب کہا گیا جو نماز میں خشوع کا اظہار کرتے ہیں. اب وہاں پہ ہم ترجمہ خوف کریں گے تو کچھ اور مطلب آ جائے گا. یہ نہیں کہ جو نماز میں خوف رکھتے ہیں بلکہ نماز میں خشوع کرتے ہیں، یعنی وہی اللہ کی عظمت کی وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ کہاں خدا اور کہاں میں. اور آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کے بزرگ جو ہیں، عظیم ہستی ہیں، وہ نماز پڑھ کے یا کوئی نیکی کر کے استغفار کرتے تھے. اس کی ریزن بھی یہ ہوتی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ خدا کہاں اور میں کہاں، خدا کہاں اور میری عبادت کہاں. تو اپنی عبادت سے ان کو شرم آتی تھی ان معنوں میں کہ اللہ کی عظمت بہت زیادہ. خشوع ان معنوں میں کہ اللہ کی عظمت کی وجہ سے ہمیں جو دبدبہ محسوس ہوتا ہے ان معنوں میں خشوع ہے. اور خوف کا ورڈ شاید اس کا بہترین ترجمہ نہیں ہے میرے خیال پر.
شکریہ استاد، شکریہ، الحمدللہ، شکریہ، بہت شکریہ.
جی بہت خوب برادر. ڈاکٹر ایک اور برادر نے ہینڈ ریز کیا تھا، کوئی اور سوال؟ ڈاکٹر جاوید نے ہینڈ ریز کیا تھا.
جی بالکل استاد محترم، میں اسی بات کو قبلہ صاحب کی سیکنڈ کر رہا تھا، زاہد صاحب کی، کہ اردو کی لیمیٹیشن کی وجہ سے ہم نے بہت سے الفاظ کے مطالب ان کو گڑمڑ کر دیے. اسی طرح جیسے تقوی کو بھی ہم نے خوف اور ڈر کے معنی میں لے لیا ہوا ہے، ایسے ہی خشیت کو اور ایسے ہی. تو اس کو میں اسی بات.
جی بہت شکریہ. کوئی اور؟
اگر کسی اور کا سوال نہیں ہے تو استاد اجازت دیں میں پھر سے ایک سوال پوچھ لوں.
جی
بسم اللہ.
ان کے پوائنٹ پہ ایک چیز ایڈ کرنی تھی کہ جس طرح شاید بہت سے نوجوانوں نے یہ چیز اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کی ہوگی کہ اگر ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے تو انسان ہر قدم پھونک پھونک کے رکھ رہا ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ سامنے والا ناراض ہو جائے، تو مجھے لگتا ہے کہ خدا کے خوف میں بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر ہمیں خدا سے سچی محبت ہوگی تو ہم ڈریں گے ہر سٹیپ لینے سے.
جی, یہ ڈرنا جو ہے یہ گویا نیاز مندی کا اظہار ہے, عجز و انکساری کا اظہار ہے, اور اس ڈرنے کو اس ڈرنے سے جدا کرنا چاہیے کہ جو مثلاً کوئی ہیبت ناک یا خوفناک چیز سے ڈرنا ہوتا ہے. یہی کنفیوژن اصل میں جو ہے وہ کریٹ ہوئی, اور یہ سارا جو کیونکہ الفاظ کی محدودیت ہے تو یہاں پہ ڈرنا اور خوف کھانا یقیناً یہی ہے, جبکہ اللہ تو پیار ہی پیار ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا خالق ہے, ہمارا مالک ہے اور ہمارا مدبر ہے, اور اس نے ہی جو ہے وہ ہماری خلقت کا آغاز کیا, اس نے ہمیں کمال تک پہنچایا, اور انشاءاللہ کے آگے بھی ہم اسی کے فضل و کرم کے امیدوار ہیں.
جی ایسے ہی میں بہت ہی محسوس سی اگزامپل بہت مختصراً دے دوں کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے, ایک بچہ ہے, فزیکل اگزامپل ہے, وہ بہت اچھا اسٹوڈنٹ مشہور ہے, یہ میں نے اگزامپل دیکھی کچھ دن پہلے, تو اس کے ٹیچر بہت اس کی تعریف کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ بہت اچھا ہے, تو اسے گھر میں غلطی ہو گئی تو اس کے پیرنٹ نے کہا کہ ہم نا تمہارے ٹیچر کو بتائیں, تو اسٹوڈنٹ نے کہا نہیں پلیز میرے ٹیچر کو مت بتائیے گا. اب اس کو پتا کہ میرے ٹیچر نے نہیں مارنا, ٹیچر وہ نہیں مارتے ان کو, لیکن اب اس کو یہ ہے کہ میری جو ایک اچھی ریپیوٹ ہے میرے ٹیچر کے سامنے وہ خراب ہو جائے گی, جو ایک اتنا اچھا ٹیچر ہے, میرا اتنا خیال رکھتا ہے, مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے, تو وہ جو ہے نا مجھ سے ناراض ہو جائے, مجھے یہ پسند نہیں ہے. تو شاید خشیت ان معنوں میں ہم لے سکتے.
ایک سوال مجھے بھی کرنا ہے.
جی بسم اللہ کے لئے.
میں یہ غور کر رہی تھی اس پہ سورہ نازعات میں یہ جو لکھا ہے کہ سورہ نازعات نازل ہوئی تاکہ ہمیں بتائے کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں انسان کیوں خلق کیا گیا ہے. تو اس یہ ہمیں مطلب اس میں ہمیں یہ کیسے پتہ چلے کہ ہمیں انسان کیوں بنایا, مطلب ہمیں اللہ تعالیٰ کچھ اور بنا دیتا تو ہمیں انسان کیوں بنایا اس نے.
یعنی مراد یہ کہ ہمیں پیدا کرنے کا مقصد کیا, یعنی یہ ورڈ تھوڑے سے شاید کلیئر نہیں ہے, یعنی وہی پوائنٹ یہاں پہ کہ پیدا کرنے کا مقصد کیوں. ہاں جی ہمیں
نازل ہوئی تاکہ ہمیں بتائے کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں انسان کیوں خلق کیا گیا, یعنی انسان کے روپ میں ہمیں کیوں خلق کیا, ہمیں کچھ اور کسی اور روپ میں بھی خلق کر سکتا تھا وہ.
جی برادر میں اس پہ کچھ گزارش کروں.
جی
طاہر عزیز آپ نے بہت اچھا سوال کیا, اور یہ ہمیں یعنی اس چیز کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ جیسے کہ سورہ کے شروع میں آغاز ہوا فرشتوں کے عمل کا, فرشتوں کے ایک ایکشن کا, اس کے بعد پھر بیچ میں ایک سرکش انسان کا ذکر ہوا, طاغوتی نظام کا ذکر ہوا, اس کے سامنے بندہ رحمان کا ذکر ہوا, اور اس طرح سے یہ سارے مراحل جو ہیں وہ کرتے کرتے پھر جب ہم سورہ کے اگلے دستے میں پہنچتے ہیں تو اس میں پھر یہ بیان کیا گیا ہے کہ دیکھو یہ جو سارے انعام و اکرام ہیں وہ انسان کے لیے ہیں, اور ایک طرف انعام و اکرام ہے اور ایک طرف عذاب و عقاب ہے, تو اگر تم راہ راست پہ چلتے رہو گے خدائے وحدہ لا شریک کی ہدایت پہ لبیک کرتے ہوئے تو گویا تم فرشتوں سے بھی آگے نکل جاؤ گے, اور تم اشرف المخلوقات ہو, اور تم ہی وہی مخلوق ہو کہ جس کی خلقت پہ خالق اکبر نے ناز کیا, اور جس کی خلقت بارک اللہ احسن الخالقین. تو یقیناً کیونکہ یہ جو فضیلت ہے یہ صرف انسان کو حاصل ہے, اور یہ عاقبت جو ہے یہ بھی رشد اور اس کی صلاحیت جو ہے وہ انسان کے لیے ہے, تو لہٰذا یہ انسان کی فضیلت کے لیے بھی کو بھی پہ بھی دلالت کرتی ہے یہ سورہ.
بہت خوب برادر زاہد اور خاہران اور استاد محترم کا آپ سب کے سوالات, آپ سب کا جو بیان انداز تھا اور آپ سب کے متعلق واقعی لائق استفادہ تھے, اور ہم نے الحمدللہ خوب استفادہ کیا. جیسا کہ ہماری جو ٹائمنگز ہیں درس کی آج کی نشست کی وہ بھی اختتامی مراحل کی طرف آ چکی ہیں, تو آپ سب کے شکریہ کے ساتھ اس کو ہم دعا کے ساتھ جو ہے وہ اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں. جن افراد کا مزید سوال ہو ان کے لیے بھی گروپ کی پرائیویسی اوپن کی جائے گی, تو وہاں پہ آپ مزید اپنے سوالات ارسال کر کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ کہ جو سر زاہد ہیں اور سر علی ہیں وہ آپ کے جوابات جو ہیں وہ گروپ میں ضرور دیں گے. مزید یہ کہ جو کوسچنز آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے ہیں جائیں گے انشاءاللہ, ان کے بھی جواب جو ہیں آپ لوگ مشخص کیے گئے اوقات میں ضرور شیئر کریں گے. دعا کے ساتھ, دعائے فرج کے ساتھ آج کی نشست کو ہم انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. کل ٹھیک اسی وقت پر 9 بجے سے 10:30 بجے تک انشاءاللہ کہ ہم سورہ عبس کے مہمان ہوں گے, تو تمام احباب جو ہیں سورہ عبس کی تلاوت کے ساتھ کل کی نشست میں شرکت ضرور کریں. التماس سے دعا, خدا حافظ.